पृष्ठ संख्या 63, शंकर, परंपरा और नई चेतना की एकता। नाथूराम शर्मा शंकर की कविता पर विचार करने वाले विद्वान प्रायः कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में शंकर जी के साथ न्याय नहीं किया है। अतः यह आवश्यक है कि हम पहले शुक्ल जी के मूल्यांकन को ध्यान से देखें। आचार्य शुक्ल ने शंकर जी को द्विवेदी युग का कवि माना है, पर उन्हें द्विवेदी मंडल के बाहर की काव्य भूमि पर अपना स्वतंत्र मार्ग बनाकर सरस और प्रभावपूर्ण कविता दिखने वाला द्विवेदी जी के प्रभाव से मुक्त कवि कहा है। द्विवेदी युग के ऐसे कवियों के बारे में आचार्य शुक्ल ने लिखा, इन्वर्टेड कामा, इन कवियों में से अधिकांश दो रंगी कवि थे, जो ब्रजभाषा में तो श्रृंगार, वीर, भक्ति आदि की पुरानी परिपाटी की कविता कवित्व सवैयों या गेय पदों में करते आए थे और खड़ी बोली में नूतन विषयों को लेकर चलते थे। बात यह थी कि खड़ी बोली का प्रचार बराबर बढ़ता दिखाई देता था और काव्य के प्रवाह के लिए कुछ नई नई भूमियाँ भी दिखाई पड़ती थीं। देश दशा, समाज दशा, स्वदेश प्रेम, आचरण संबंधी उपदेश आदि तक ही नई धारा की कविता न रहकर जीवन के कुछ और पक्षों की ओर भी बढ़ी, पर गहराई के साथ नहीं। प्यार, वीरता, उदारता, सहिष्णुता इत्यादि के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक प्रसंग पद्यबद्ध हुए, जिनके बीच बीच में जन्मभूमि प्रेम, स्वजाति गौरव, आत्मसम्मान की व्यंजना करने वाले जोशीले भाषण रखे गए, इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस लंबे उद्धरण में जिन कवियों की कविता का विवेचन है, उनमें एक शंकर जी भी हैं। पाठक अगर शंकर जी की कविता को ध्यान में रखकर इस विवेचन पर विचार करें तो देखेंगे कि इसमें शंकर जी की कविता की मुख्य विशेषताएं स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। आचार्य शुक्ल का यह विवेचन अपर्याप्त कहा जा सकता है, लेकिन गलत नहीं। असल में भावुकता के आवेग में शुक्ल जी पर आरोप लगाना सरल है, लेकिन उनसे आगे बढ़कर शंकर जी की कविता का सुंदर विवेचन करना कठिन है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में संक्षेप में, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी शंकर जी की कविता का मूल्यांकन किया है। उन्होंने शंकर जी की पुरानी परिपाटी की कविता की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह पद्य रचना में अत्यंत सिद्धहस्त थे, समस्या पूर्ति बड़ी सटीक और सुंदर करते थे। शुक्ल जी ने यह भी पृष्ठ संख्या 64 लिखा है, इन्वर्टेड कामा, छंदों के नपे तुले विधान के साथ ही उनकी उद्भावनाएं भी अनूठी थीं, इन्वर्टेड कामा बंद। यह बात शंकर जी की ब्रजभाषा की ही नहीं, खड़ी बोली की कविताओं के बारे में भी सत्य है। आचार्य शुक्ल ने शंकर जी की खड़ी बोली की कविताओं का महत्व स्वीकार किया है, लेकिन यह भी लिखा है, इन्वर्टेड कामा, उनकी पदावली कुछ उड़ंदता लिए होती थी, इन्वर्टेड कामा बंद। आचार्य शुक्ल के अनुसार, इन्वर्टेड कामा, इसका कारण यह है कि उनका संबंध आर्य समाज से रहा, जिसमें अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के उग्र विरोध की प्रवृत्ति बहुत दिनों तक जागृत रही, इन्वर्टेड कामा बंद। यह सही है कि शंकर जी का संबंध आर्य समाज से था। उन्होंने स्वामी दयानंद पर कविता लिखी है। उनकी कविताओं में आर्य सामाजिक सुधारवाद है, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का उग्र विरोध है। लेकिन क्या सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का उग्र विरोध गलत है? क्या विरोध की उग्रता से उपजी काव्य भाषा की तलखी को उदंडता कहना उचित है? अगर सोए हुए समाज को जगाने के लिए तीखी भाषा में कड़वा सच कहना उदंडता है, तो यह उदंडता केवल शंकर जी में ही नहीं है, अपितु कबीर से लेकर धूमिल तक की हिंदी काव्य परंपरा में ऐसी उदंडता बहुत है। आज इसकी आवश्यकता और मांग बढ़ रही है। शंकर जी कबीरदास की परंपरा के आधुनिक कवि हैं। आचार्य शुक्ल जैसे कबीर की उग्रता सह नहीं पाते, वैसे ही शंकर की उग्रता भी उन्हें नापसंद है। यही कारण है कि वह कबीर और शंकर दोनों में उदंडता देखते हैं। अगर अप्रिय सत्य कहना ही उदंडता है, तो ऐसी उदंडता आचार्य शुक्ल के लेखन में भी कम नहीं है। शंकर जी का कवि कर्म सन 1880 से 1832 तक फैला हुआ है, भारतेंदु युग से छायावाद तक, लेकिन उनकी कविता में छायावादी एवं रहस्यवादी काव्य चेतना कहीं नहीं है। उनके काव्य संसार में पर्याप्त विविधता है। यह विविधता विषय वस्तु, शिल्प और भाषा तीनों में हैं। उनके भक्ति के पद भक्तिकाल के कवियों के पदों के निकट लगते हैं, विशेष तौर से सूर के विनय के पदों के निकट। उनके श्रृंगार के कवित्व सवैये और दोहे रीतिकाल की कविता से हुड़ करते प्रतीत होते हैं। उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना की कविताएं कहीं भारतेंदु युग के साथ चलती दिखाई देती हैं, कहीं भारतेंदु युग से आगे जाती हैं। सुधारवाद और नैतिक आग्रहों में वह द्विवेदी युगीन हैं, लेकिन द्विवेदी युग के मर्यादावाद का अतिक्रमण भी करते हैं। उनके काव्य की जिंदा दिली और व्यंग्य वृत्ति भारतेंदु युग की याद दिलाते हैं, तो उपदेश परकता द्विवेदी युग की। शंकर जी ने ब्रजभाषा, खड़ी बोली और उर्दू में काव्य रचना की है। भाषा की यह विविधता उन्हें भारतेंदु युग से जोड़ती है। भारतेंदु युग के अधिकांश लेखकों में भाषा की यह विविधता और प्रयोगशीलता दिखाई देती है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र इस प्रवृत्ति के सबसे बड़े उदाहरण हैं, जो वैसे तो अनेक भारतीय भाषाओं में कविता लिखते थे, लेकिन मुख्य रूप से ब्रजभाषा और खड़ी बोली के साथ साथ उर्दू में भी कविता करते थे। पृष्ठ संख्या 65। भारतेंदु सच्चे और व्यापक अर्थों में हिंदी के लेखक थे। शंकर जी प्रताप नारायण मिश्र के मित्र थे। उनमें प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। शंकर जी के कवि कर्म की एक बड़ी विशेषता यह है कि वह परंपरा और नई चेतना के सामंजस्य के कवि हैं। वह रूढ़िवाद के विरोधी हैं, लेकिन नई चेतना के साथ परंपरा के सार्थक रूपों का उपयोग करते हैं। वह कविता को बनी बनाई रूढ़ियों के अंदर देखने के बदले उसे समाज और जीवन की विकास प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते देखना चाहते थे। वह काव्य अनुभूति को काव्य शास्त्र के घेरे से निकालकर जीवनानुभव से जोड़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने लिखा, अब लो जितना भाव जांच कर जान लिया है, क्या अनुभव का अंत वही बस मान लिया है। जीवन और समाज के नए अनुभवों से अपनी कविता को जोड़कर ही शंकर जी ने हिंदी कविता को भावबोध, विचार और भाषा के स्तर पर विकसित किया। शंकर जी की कविता में परंपरा और नई चेतना के सामंजस्य का एक रूप वहाँ दिखाई देता है, जहाँ वह ब्रजभाषा में अनेक समय के समाज के यथार्थ के किसी न किसी पक्ष की अभिव्यक्ति करते हैं। लेकिन ऐसी कविताएं ब्रजभाषा की काव्य रूढ़ियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं। रूढ़ि के इस दबाव से अपनी कविता को मुक्त करने और उसे समकालीन जीवन की समस्याओं की अभिव्यक्ति के लायक बनाने के प्रयास में ही शंकर जी ने ब्रजभाषा को छोड़कर खड़ी बोली को अपनाया। उनकी खड़ी बोली की कविताओं में ही उस समय के समाज की वास्तविकताओं और समस्याओं के सक्षम अभिव्यक्ति हुई है। लेकिन खड़ी बोली में कविता लिखते हुए उन्होंने छंद विधान को नहीं छोड़ा, जबकि उनके सामने छंद मुक्ति का आंदोलन और मुक्त छंद का काव्य प्रवाह आ चुका था। शंकर जी ने काव्य परंपरा के प्राप्त छंदों का ही उपयोग नहीं किया, उन्होंने लोक काव्य में प्रचलित छंदों का भी कुशल प्रयोग किया है। उनके सामने उद्देश्य था कविता के माध्यम से जनजीवन की समस्याओं को व्यापक जनता तक पहुंचाना। इस उद्देश्य के लिए छंदों के महत्व को उन्होंने पहचाना, इसलिए काव्य परंपरा और जनजीवन दोनों में प्राप्त छंदों को अपनाया। आज भी जो कवि छंद से कविता की आयु और लोकप्रियता का संबंध जानते हैं, वह मुक्त छंद की रूढ़ि से मुक्त होकर छंदों का प्रयोग कर रहे हैं। द्विवेदी युग में कविता की एक प्रवृत्ति समस्या पूर्ति की थी। यह प्रवृत्ति पहले से चली आ रही थी। शंकर जी समस्या पूर्ति की कला में अत्यंत कुशल थे। उनके इस काव्य कौशल के बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित हैं। हम उन कहानियों को छोड़ भी दें तो शंकर सर्वस्व की समस्या पूर्ति स्वयं शंकर जी के इस काव्य कौशल पृष्ठ संख्या 66 की साक्षी है। इस समस्या पूर्तियों में छंद विधान, शब्द संयोजन और वक्रोक्ति का चमत्कार ही नहीं है, कहीं कहीं गहरी सहृदयता भी है। शंकर जी ने काव्य रचना के इस पुरातन रूप का एक नया उपयोग भी किया है। उन्होंने समस्या पूर्ति के ढांचे में राजनीतिक कविता लिखी है। उनकी एक प्रिय समस्या है अटकत है। शंकर सर्वस्व में इनकी तीन पूर्तियां मौजूद हैं। एक पूर्ति श्रृंगार परक है और परंपराबद्ध है। बाकी दो में से एक का लक्ष्य अंग्रेजी राज के लूट तंत्र की नौकरशाही है और दूसरी का पुलिस। पहली समस्या पूर्ति देखिए। नौकरों की शाही सभ्यता का गला काटती है, गांधी के संग आती आँखियों में खटकत हैं। भारत को लूट कूट नीति की उजाड़ रही न्याय के भिखारी ठौर ठौर भटकत हैं। जेलों में स्वदेश भक्ति हिंसाहीन सज्जनों को पेट पाल पात की पिशाच पटकत हैं। कौन पै पुकारे अब शंकर बचा लो हमें, गोरे और गोरों के गुलाम अटकत हैं। रूप पुराना है लेकिन अंतर्वस्त्र नई है, रचना पद्धति और भाषा पुरानी है लेकिन राजनीतिक चेतना नई है। देशभक्ति और साम्राज्यवाद विरोध की भावना से भरपूर यह समस्या पूर्ति परंपरा और नई चेतना के सामंजस्य का एक अच्छा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गोरों के गुलाम अनुयायी काले हाकिमों के गोल बांध गुंडे लल मुंडे मटकत हैं। झूठा बनते हैं जान माल को रखाने वाले, कौन मानता है सही सांचे हटकत हैं। घेर घेर लाते घूस खाते हैं घसीटते हैं, लोहू जनता का गटा गट गटकत हैं। पाप करते हैं डरते हैं नहीं शंकर से, भाई ये हमारे हम ही से अटकत हैं। यह है अंग्रेजी राज्य की पुलिस गोलबंद गुंडों का असली रूप और चरित्र। इस चित्रण के लिए शंकर जी की कला की सराहना ही काफी नहीं है, जनता से उनकी सच्ची सहानुभूति और निर्भीकता भी ध्यान देने योग्य है। अब चाहें तो अंग्रेजी राज की पुलिस के इस चित्रण से आज की पुलिस की तुलना कर लें और अगर पाएं कि अंग्रेजी राज के लूटतंत्र के सच्चे उत्तराधिकारी आज के भारतीय लोकतंत्र की पुलिस का भी इसमें सच्चा चित्र है, तो कवि दृष्टि की दूरदर्शिता और कविता की पृष्ठ संख्या 67 व्यापकता एवं सार्थकता पर विचार कीजिए। ऐसा नहीं है कि इन दोनों समस्या पूर्तियों में पुराना रूप नई अंतर्वस्तु को प्रभावित नहीं कर रहा है। महत्व की बात यह है कि नई अंतर्वस्तु से पुराने रूप को नया अर्थ मिल रहा है। इसी समस्या पूर्ति की शैली में शंकर जी ने अनेक राजनीतिक कविताएं लिखी हैं। विशेष रूप से वली जाएंगे राखी बांध लीजिए सही जात है, भारत के सम भारत हैं जैसी समस्या पूर्तियों में उनकी देशभक्ति स्वतंत्रता प्रेम साम्राज्यवाद विरोधी चेतना और अतीत के भारत गौरव के साथ वर्तमान की भारत दुर्दशा के बोध की अभिव्यक्ति है। शंकर जी की काव्य चेतना का विकास उनकी सामाजिक राजनीतिक चेतना के विकास से जुड़ा हुआ है। उनकी सामाजिक चेतना बहुत कुछ आर्य समाज के प्रभाव से बनी, इसलिए समाज में व्याप्त कुरीतियों और अंधविश्वासों का जोरदार खंडन उनकी कविता में हुआ है। विशेष तौर से भारतीय समाज में नारी जीवन की दुर्दशा पर, बाल विवाह और विधवा जीवन की समस्या पर उन्होंने ढेर सारी कविताएं लिखी हैं। ऐसी कविताओं में सबसे ऊंचा स्वर सुधारवाद का ही है। इसके साथ साथ जनजीवन में फैली विषमता गरीबी और बदहाली का भी बोध उनकी अनेक कविताओं में है। उस समय के कई दूसरे सजग कवियों की तरह ही शंकर जी की कविता में भी अंग्रेजी राज की लूट से तबाह किसानों की दशा का जगह जगह चित्रण है। भारतीय जनता को लूटने वाले अंग्रेजी राज के चाकरों के बारे में शंकर जी ने लिखा है, खाते हैं भर पेट जो मार मार कर घूस, वह चाकर ऊंचे चढ़े रुधिर न्याय का चूस। जनता को लूटने वाले केवल अंग्रेजी राज के चाकर ही नहीं हैं, उनके साथ देशी दलाल भी थे। ऐसे सेठों का एक व्यंग्य चित्र शंकर जी के शब्दों में देखिए, तन मोटो मोटे चलन धन मोटो घर माई, मति के मोटे सेठ जी कहाँ मुटाई नाई। अब ऐसे दलालों की करतूतों पर शंकर जी की चोट देखिए, देशी तूल अनाज से भरते रहे जहाज, रक्षा करें विदेश की धन्य महाजन राज। सरकारी लूट के साथ साथ प्रकृति की मार भी सबसे अधिक गरीब किसानों पर ही पड़ती है। संवत 1953 से 54 में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल पर एक आल्हा हिंदी प्रदीप में छपा था जो डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तक भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा में उद्धृत है। इस आल्हा का प्रारंभ इस प्रकार होता है, संवत 1953 माँ पड़ा हिंद में महाअकाल, घर घर फाके होने लागे दर दर प्राणी फिरे बेहाल। पृष्ठ संख्या 68। इसी अकाल पर सन 1894 में शंकर जी ने एक लंबी कविता लिखी थी, संवत 1953-54। हिंदी प्रदीप में छपे आल्हा और शंकर जी की उक्त कविता में अनेक समानताएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों में किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति है। शंकर जी की कविता की कुछ पंक्तियां देखिए और अकाल की भीषणता तथा जनता की हालत पर विचार कीजिए। अब को संवत ऐसो आयो, भारत में दारुण दुख छायो। गली गली में भूखे डोलें, व्याकुल सारत वाणी बोलें। तन पे केवल रही लंगोटी, मिले नहाए पेट भर रोटी। बीन बीन कर दाने कच्चे, चाबत फिरे बिचारे बच्चे। जो लोग रसराज श्रृंगार से कविता का दूर जाना उचित नहीं समझते, या जो व्यंजना से नीचे की भूमि पर कविता का आना पसंद नहीं करते, संभव है उन्हें यहाँ कविता ना दिखाई दे। लेकिन जो कविता को मानवीयता से संपृक्त देखना चाहते हैं, उनकी मानवीयता को जगाने में यह कविता सक्षम है। अगर संवत 1953-54 के अकाल पर लिखी इन दोनों कविताओं को तुलसीदास की कवितावली के अकाल वर्णन के साथ पढ़ा जाए, तो यह समझते देर ना लगेगी कि यह हिंदी काव्य की वह परंपरा है जो कला की अलौकिकता की आराधना करने के बदले जनजीवन से उसके आत्मीय संबंध की साधना पर जोर देती है। शंकर जी की राजनीतिक चेतना उस काल के अनेक दूसरे कवियों से अधिक प्रखर है। उन्होंने राष्ट्रीय जागरण की कविता ही नहीं लिखी, अपितु स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग भी लिया। इस प्रकार वह स्वाधीनता आंदोलन के कवि और कार्यकर्ता दोनों हैं। शंकर जी के राजनीतिक दृष्टिकोण के निर्माण में लोकमान्य तिलक के व्यक्तित्व और चिंतन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि उन्होंने कई कविताओं में गांधी जी का उल्लेख किया है और गांधी जी के चलाए आंदोलनों का समर्थन किया है, लेकिन उनका राजनीतिक दृष्टिकोण मुख्यतः तिलक मार्गी लगता है। उन्होंने तिलक के गिरफ्तार होने और जेल जाने पर कविता लिखी थी, जो तिलक के पत्र केसरी में उद्धृत हुई थी। उन्होंने तिलक की मृत्यु पर भी मार्मिक कविता लिखी। तिलक से प्रभावित होने के कारण ही जैसा उग्र साम्राज्यवाद विरोध शंकर जी की कविता में है, वैसा उस समय के कवियों में कम ही मिलता है। यहाँ मैं पाठकों के विचारार्थ एक समस्या रखना चाहता हूँ। आजकल हिंदी नवजागरण की काफ़ी चर्चा है। हिंदी नवजागरण को चर्चा के केंद्र में लाने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। हिंदी नवजागरण के प्रसंग में बंगाल के नवजागरण की बात होती है। बंगाल के नवजागरण से हिंदी नवजागरण के संबंध की भी चर्चा होती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हिंदी नवजागरण और मराठी नवजागरण के पृष्ठ संख्या 69 संबंध पर कोई विचार नहीं होता, जबकि हिंदी नवजागरण के निर्माताओं का मराठी नवजागरण के नेताओं से गहरा संपर्क रहा है। तिलक, उनके पत्र केसरी और उनके ग्रंथ गीता रहस्य का हिंदी नवजागरण के विचारकों लेखकों पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस प्रसंग में हम मराठी से महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के चिंतन लेखन के संबंध पर विचार करें तो अनेक आश्चर्यजनक निष्कर्ष सामने आएंगे। मराठी और हिंदी को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में माधवराव स्प्रे हैं, जिन्होंने न केवल गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद 1916 हिंदी पाठकों को दिया, बल्कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट नामक पुस्तक लिखकर मराठी और हिंदी भाषा जनता को निकट लाने और दोनों की राजनीतिक चेतना को जोड़ने का काम किया। भारतीय नवजागरण से हिंदी नवजागरण की एकता और भिन्नता पर विचार करते समय मराठी नवजागरण में हिंदी नवजागरण के संबंध पर ध्यान देना अत्यावश्यक है। शंकर जी की काव्य चेतना और राजनीतिक चेतना के विकास का एक नया स्तर उनकी खड़ी बोली की कविताओं में दिखाई देता है। मई 1906 की सरस्वती में उनकी कविता छपी थी, हमारा अधः पतन। इस कविता का मूल स्वर है, हम कौन थे, क्या हो गए। बाद में बंग भंग विरोधी आंदोलन के प्रभाव से उनका दृष्टिकोण बदला तो कविता का भी स्वर बदला। स्वदेशी भावना, स्वतंत्रता की आकांक्षा और साम्राज्यवाद विरोध में दृढ़ता आई तो कविता में भाव और भाषा में दीनता की जगह शक्ति का संचार हुआ। आचार्य शुक्ल ने स्वाधीनता आंदोलन के विकास के साथ हिंदी कविता के विकास का संबंध स्पष्ट करते हुए लिखा है, इन्वर्टेड कामा, द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, पर कर्म में तत्पर कराने वाला, आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह ना था। इन्वर्टेड कामा बंद। यह बात द्विवेदी मंडल के कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता के बारे में ठीक है, लेकिन द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि शंकर जी की कविता के बारे में सही नहीं है। आचार्य शुक्ल के अनुसार द्विवेदी युग के बाद की हिंदी कविता तृतीय उत्थान की कविता में यह विशेषता आई कि इन्वर्टेड कामा कवियों की वाणी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। इन्वर्टेड कामा बंद। यह गुण शंकर जी की कविता में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। शंकर जी ने स्वाधीनता आंदोलन के नए रूप को देखा, उसके महत्व को पहचाना और असहयोग आंदोलन का स्वागत करते हुए लिखा, जागा क्षुब्ध राष्ट्र सागर में असहयोग तूफान, जनता में जातीय जोश के उठने लगे उफान। पृष्ठ संख्या 70। यह राष्ट्रीय जागरण के नए रूप को मुखर करने वाले काव्य का नया स्वर है। इस बोध के बाद ही कवि यह आह्वान कर सकता था, ऐ अहले हिंद, अब तो उठो, खूब सो चुके, कर प्यार तनज्जुल पे, तरक्की को खो चुके, शंकर जला दो जल्द गुलामी के जाल को, राहत रहे न तुख्म मुसीबत के बो चुके। शंकर जी ने अनेक कविताओं में देशवासियों को स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने के लिए प्रोत्साहित किया है। समस्या पूर्ति की शैली में उनकी एक कविता है, बलि जाएंगे। इस कविता में बलिदान और आत्मत्याग की भावना है, लेकिन इसमें वह सहज आवेग और उत्साह नहीं है जो बलिदान गान में है। बलिदान गान का आरंभ इस प्रकार होता है, शंकर के प्यारे उठो, उन्नति का प्राण ठान, लो स्वराज स्वतंत्र को दो जीवन बलिदान। अब बाद की कुछ पंक्तियां देखिए और शंकर जी की राजनीतिक चेतना के साथ साथ काव्य भाषा की शक्ति पर भी ध्यान दीजिए। समता की प्यारी पद्धति पर निर्विराम चलता होगा, शुद्ध भावना की विभूति को अंगों पर मलना होगा, ध्रुवता के आतंक ताप से धातु तुल्य गलना होगा, सुदृढ़ सच्चाई के साचे में निर्मल हो ढलना होगा, इष्ट देव स्वातंत्र ध्येय का धन्य ध्यान धरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ स्वतंत्रता के साथ साथ समता की प्यारी पद्धति पर भी जोर दिया जा रहा है। अभिप्राय यह है कि स्वतंत्रता के साथ समता की पद्धति लाना भी जरूरी है। इस कविता में शंकर जी अपने कई समकालीन कवियों से आगे चलते दिखाई देते हैं, लगभग निराला के साथ खड़े होते हैं। स्वाधीनता आंदोलन की सफलता के लिए, स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने के लिए देशवासियों को प्रोत्साहित करना ही पर्याप्त ना था। जो लोग स्वाधीनता प्राप्ति के लक्ष्य में बाधक थे, उनकी पहचान कराते हुए उनसे देशवासियों को सावधान करना भी आवश्यक था। यह काम शंकर जी ने खूब किया है। भारत की जनता को लूटने और उसे स्वतंत्रता से वंचित करने में सबसे आगे थी अंग्रेजी राज की नौकरशाही। शंकर जी ने बार बार इस नौकरशाही को अपने व्यंग्यवाणों का लक्ष्य बनाया है और जनता को सावधान किया है। कांग्रेस के नेताओं को भ्रम था कि आवेदनों से, पृष्ठ संख्या 71, स्वतंत्रता मिल जाएगी। अंग्रेज नौकरशाही की ओर आशा से देखने वालों को असलियत बताते हुए शंकर जी ने लिखा, नौकरशाही दे चुकी भारत तुझे स्वराज्य, डाल न आशा आग में असहयोग का आज्य, क्रूर कुशासन की धजधारी, कट्टर कूट कुनीति पसारी, हाँ न लोकमत से डरती है, भारत का भुरता करती है, अकड़ अड़ाती है चित चाही, अटकी कुटिला नौकरशाही। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ नौकरशाही का हित जुड़ा था, इसलिए वह स्वाधीनता आंदोलन का विरोध करती थी। अंग्रेजी राज के साथ नाभि नालबद्ध देशी दलाल और सामंत भी थे, जो भारतीय जनता को गुलाम रखकर लूटना खसोटना चाहते थे। इनकी ओर इशारा करते हुए शंकर जी ने लिखा, महाराज नवाब नकीले, सेठ रईस तुंदारे, पूज पूज गोरी प्रभुता को, निरखे नीति नवारे। शंकर जी ने दिवाली और होली के अवसर पर राजनीतिक चेतना जगाने वाली कविताएं लिखी हैं। यह प्रवृत्ति भारतीय युग में बहुत व्यापक थी। जलियांवाला बाग के भीषण नरसंहार से क्षुब्ध होकर शंकर जी ने कविता लिखी हत्यारी होली। इसका आरंभ इस प्रकार होता है। दुख देखे दिवाली बिताई, दुख देखे दिवाली बिताई, हंसो मत रोते रहो होली आई। रौलट एक्ट पास होते ही राजनीति गरमाई, रोग दुकाल युद्ध की मारी दीन प्रजा घबराई। इसी परंपरा का अधिक लोकप्रिय रूप भारत और वलायत होली गीत है। दई मारे भारत होरी है, तू अतिरंक वलायत रानी, तू कारो वह गोरी है दाई मारे। तू दारुण दरिद्र कौ दादा, वह धन धनेश की छोरी है दाई मारे। डॉट डॉट गीत होली का है, इसलिए विनोद का भाव है, लेकिन इस विनोद के पीछे व्यंग्य है, और इस व्यंग्य के पीछे भारत की गुलामी एवं गरीबी के बोझ से उपजी वेदना है। ऐसे अनेक गीत संकट सर्वस्व में हैं। राजनीतिक व्यंग्य की कविता की यह परंपरा भारतीय युग की विशिष्ट देन है, जिसका विकसित रूप नागार्जुन की कविता में दिखाई देता है। शंकर जी के गीत भूला रे भोला, भूखा भारत देश से नागार्जुन के गीत प्रभु जी तुम चंदन हम पानी की तुलना करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। पृष्ठ संख्या 72। शंकर जी ने स्वाधीनता आंदोलन और उसके दमन के अनेक प्रसंगों पर कविताएं लिखी हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन, रौलट एक्ट के विरोध और जलियांवाला बाग के नरसंहार के विरोध में कविताएं लिखी हैं। शंकर जी ने यदि छदम देशभक्तों की खबर ली है तो कांग्रेसियों की समझौता परस्ती की आलोचना भी की है। जन आंदोलन के उभार से घबरा कर अंग्रेजी राज ने जब प्रेस का मुंह बंद करने का प्रयास किया, तब शंकर जी ने लिखा, संपादन स्वतंत्र को कुचल रहा सर्वत्र, प्रेस एक्ट की मार से अब ना बचेंगे पत्र। यह दोहा एक बार फिर पुराने रूप और नई अंतर्वस्तु के नए संबंध, परंपरा और नई चेतना के सामंजस्य की कला की ओर हमारा ध्यान खींचता है। राजनीतिक दोहों की यह परंपरा नागार्जुन के दोहों तक चली आई है। शंकर जी ने हिंदी कविता की परंपरा में एक नया प्रयोग किया है, जिसका महत्व पहचाना नहीं गया है। उन्होंने चित्रों पर कविता लिखी है। कविता के आधार पर चित्र बनाने की परंपरा पुरानी है और आज भी इस दिशा में प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन चित्रों पर कविता लिखने के प्रयास कम ही हुए हैं। शंकर जी की चित्रों पर लिखी तीन कविताएं शंकर सर्वस्व में हैं, वसंत सेना और केरल की तारा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर लिखी गई कविताएं हैं। पुरानी पाठशाला के चित्रकार का नाम शंकर सर्वस्व में नहीं है। अगर हमारे सामने ये तीनों चित्र कविता के साथ होते तो चित्रों से कविताओं के संबंध पर बात करना बेहतर होता, लेकिन यहाँ सामने केवल कविताएं हैं, इसलिए उन्हीं पर बात की जा सकती है। वसंत सेना के चित्र पर कविता लिखना उतना कठिन नहीं था जितना केरल की तारा पर। वसंत सेना की छवि के पीछे मृच्छकटिकम है, तो शंकर जी ने भी कविता में मृच्छकटिकम से पूरी सहायता ली है। कविता में कथा मृच्छकटिकम से ली गई है और नखशिख वर्णन रीतिकालीन काव्य परंपरा से। चित्र तो केवल आधार है। रवि वर्मा रचित छवि में अंगों की बनावट और पृष्ठभूमि की सजावट पर जोर है, तो कविता में भी इनका ध्यान रखा गया है। अलंकार की प्रवृत्ति दोनों में है। नारी सौंदर्य के बोध का स्तर दोनों का एक सा है। दोनों में रीतिबद्धता है। वसंत सेना कविता का अंतिम छंद विशेष ध्यान देने योग्य है। दिलचस्प बात यह है कि अंतिम छंद भाषा और रचना विधान की दृष्टि से कविता के बाकी हिस्से से अलग लगता है। यह छंद हिंदी का है, लेकिन भाषा उर्दू है और रचना विधान में उर्दू काव्य परंपरा की रूढ़ियों से पूरी सहायता ली गई है। छंद इस प्रकार है, बाग की बहार देखी मौसमे बहार में तो दिले अंदलीब को रिझाया गुले तर से। पृष्ठ संख्या 73। हाय चकराते रहे आसमां के चक्कर में, तो भी लो लगी ही रही माह की महर से। आतिशे मुसीबत ने दूर की कुदूरत को, बात की न बात मिली लज्जते शंकर से। शंकर, नतीजा इस हाल का यही है बस, सच्ची आशिकी में नफा होता है जरर से। कवि ना तो चित्र का वर्णन कर रहा है, ना मृच्छ कटिकम की कथा कह रहा है, और ना वसंत सेना का रूप वर्णन कर रहा है। यहाँ कविता चित्र और नाटक दोनों से स्वतंत्र है, फिर भी वसंत सेना के मन की कथा और भाव की दशाओं की अभिव्यक्ति करता हुआ कवि दोनों से जुड़ रहा है। केरल की तारा कविता का रचना विधान नए ढंग का है, इसमें स्वप्न पद्धति का प्रयोग है। स्वप्न में चित्र की केरल की तारा कवि के पास आती है, वह रूप निहारता है, रूप का वर्णन करता है और केरल की तारा का हो जाता है। सपने में ही कवि तारा के साथ केरल की यात्रा करता है, यात्रा वर्णन के रूप में वह केरल की प्रकृति और संस्कृति का वर्णन करता है, जो रवि वर्मा के चित्रों में प्रायः मौजूद रहती है। यहाँ कवि पहली कविता की तुलना में चित्र से अधिक स्वतंत्र है, इसलिए कविता की अपनी पहचान बनी है। तीसरी कविता है पुरानी पाठशाला, इसमें चित्र कवि को भारत के अतीत और वर्तमान पर सोचने की प्रेरणा देता है, यही सोच कविता में है। प्रायः चित्र पर कविता लिखते समय कवि या तो कविता में चित्र का वर्णन करते हैं, या चित्र के प्रभावों का चित्रण करते हैं, या फिर चित्र के विषय पर स्वतंत्र शब्द चित्र बनाते हैं। कुछ कवि चित्र में कविता की खोज करते हुए कविता लिखते हैं। चित्र और कविता के बीच एकता का आधार बिंब है, इसलिए कहा जाता है कि चित्र मौन कविता है और कविता मुखर चित्र। चित्र पर कविता लिखने का एक तरीका यह भी है कि कवि चित्र के बिंबों को शब्द चित्रों में व्यक्त करे, जैसा कि एक सीमा तक वसंत सेना कविता में हुआ है। अमूर्तन की प्रधानता ने चित्र और कविता का संबंध बदल दिया है। यहाँ जिन चित्रों और कविताओं की चर्चा हुई है, वे भारतीय नवजागरण की आरंभिक अवस्था की उपज हैं, आधुनिकतावादी कला की मंजिल से काफी पहले की स्थिति में। शंकर जी कई बार कविता से वह काम लेते हैं जहाँ कविता की गति नहीं होती, वे कई बार गद्य का काम कविता से करते हैं, फलतः कविता गद्यवत हो जाती है। वे खंडन और मंडन, विरोध और समर्थन, उपदेश और प्रचार का काम कविता के माध्यम से करते हैं। ऐसी कविताओं में अनुभवों की जगह विचार होते हैं। भाषा पृष्ठ संख्या 74 व्यंजक होने के बदले तार्किक हो जाती है। उपदेश परकता के कारण भाषा में संश्लिष्टता की जगह इतिवृत्तात्मकता प्रमुख हो जाती है। कई बार कविता की भाषा भाषण की भाषा बन जाती है। इन सब बातों के उदाहरण के रूप में शंकर जी की अनेक कविताएं दी जा सकती हैं, लेकिन अगर इन सबको एक जगह देखना हो तो समालोचक लक्षण कविता देखी जा सकती है। यह कविता 1906 की सरस्वती में छपी है। वैसे इस कविता को पढ़कर लगता है कि समालोचना के अर्थ और प्रयोजन के बारे में शंकर जी कितने सजग थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य चेतना के कितने करीब। शंकर जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य चेतना में काफ़ी निकटता थी, लेकिन कुछ दूरी भी थी। द्विवेदी जी के आग्रह पर सरस्वती में शंकर जी की कविताएं छपीं। द्विवेदी जी ने उन कविताओं की तारीफ भी की। जब नागरी प्रचारिणी सभा के कुछ कवियों ने दलबंदी के कारण सरस्वती में छपने वाली कविताओं को भद्दी कविता कहा, तब द्विवेदी जी ने भद्दी कविता नामक लेख में उनको मुंहतोड़ उत्तर दिया। इस लेख में भी शंकर जी की कविता की सराहना है। शंकर जी ने भी वसंत सेना कविता के एक अंश में द्विवेदी जी के विरोधियों की खबर ली है। इस निकटता के बावजूद दोनों की साहित्य चेतना में दूरी के कारण और प्रमाण हैं। आचार्य द्विवेदी सरस्वती में छपने के लिए आई कविताओं की भाषा दुरुस्त करते थे, उनमें संशोधन करते थे और कभी-कभी मूल की एक दो ही नहीं, चार चार पंक्तियां तक बदल देते थे। सरस्वती के कवि द्विवेदी जी के संशोधन को स्वीकार करते थे, क्योंकि उस समय कवि बने रहने के लिए द्विवेदी जी के संशोधनों को स्वीकार करना शायद आवश्यक था। पर शंकर जी को यह बात पसंद ना थी, वह द्विवेदी जी के संशोधनों को स्वीकार करने के लिए तैयार ना थे। इसलिए जब कभी सरस्वती में उनकी कविता छपती थी और वह अपनी कविताओं में छोटे बड़े संशोधन देखते थे, तो सरस्वती की अपनी प्रति में संशोधित अंशों के पास मूल रूप लिख देते थे। संयोगवश सरस्वती की ऐसी प्रतियां अब भी सुरक्षित हैं। इस प्रसंग में सितंबर 1906 की सरस्वती में छपी शंकर जी की कविता पावस पंचाशिका को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। द्विवेदी जी ने इस कविता में अनेक संशोधन किए हैं, कहीं शब्द बदला है, कहीं पदावली बदल दी है, कहीं वाक्यों की संरचना, कहीं पूरी पंक्ति, और 40वें छंद की तो चारों मूल पंक्तियों के स्थान पर अपनी चार पंक्तियां कविता में जोड़ दी हैं। शंकर जी ने सरस्वती की अपनी प्रति में हर जगह मूल रूप लिख दिया है। 40वें छंद के सामने शंकर जी ने लिखा है, यह पद्य मेरा नहीं है, और कविता के अंत में चारों मूल पंक्तियां लिखी हैं। पृष्ठ संख्या 75। द्विवेदी जी के संशोधनों को देखकर लगता है कि उनका उद्देश्य केवल भाषा सुधारना नहीं है, नैतिक दृष्टि से भी कविता को ठीक करना है। द्विवेदी जी के काव्य बोध पर मर्यादावाद की छाया है। यह मर्यादावाद कविता के भाव, विचार, कल्पना और भाषा तक के संशोधनों में सक्रिय है। पावस पंचाशिका के 40वें छंद को बदलने के पीछे यही मर्यादावाद है। यह बात मूल रूप से द्विवेदी जी की पंक्तियों की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाएगी। वास्तव में यह मर्यादावाद द्विवेदी जी के ही काव्य बोध का नहीं, पूरे द्विवेदी युग के काव्य बोध का अनिवार्य अंग है। इसी मर्यादावाद के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शंकर जी की काव्य भाषा में कुछ उद्दंडता दिखाई देती है। इस प्रसंग में विचारणीय बात यह है कि द्विवेदी जी के संशोधनों से कविता बेहतर हुई या नहीं। पावस पंचाशिका के संशोधनों को देखकर मूल रूप से संशोधित रूपों की तुलना करने पर यही लगता है कि संशोधनों से कई जगह कवि के अभिप्रेत अर्थ की क्षति तो हुई है, छंद की लय और भाषा के प्रवाह में भी शिथिलता आई है। इस प्रक्रिया में मर्यादा बच गई है पर कविता खो गई है। ऐसा नहीं है कि शंकर जी अपनी कविता में सुधार परिष्कार नहीं करते थे। वही पावस पंचाशिका शंकर सर्वस्व में पावस प्रसाद शीर्षक से छपी है। पावस प्रसाद में इतना परिवर्तन और परिष्कार है कि वह पावस पंचाशिका से भिन्न नई और बेहतर कविता बन गई है। पावस पंचाशिका में 50 छंद हैं, पावस प्रसाद में 48। कुछ छंद बदल दिए गए हैं, कुछ नए जोड़े गए हैं। जिन छंदों को द्विवेदी जी ने अधिक सुधारा था वे पावस प्रसाद में नहीं हैं, ना मूल रूप में और ना संशोधित में। उनके बदले जो छंद जोड़े गए हैं उनमें मर्यादा का ध्यान रखा गया है। इससे लगता है कि द्विवेदी जी के सुधार का असर तो हुआ है, लेकिन सुधार स्वीकार नहीं है। जिन छंदों को द्विवेदी जी ने कम सुधारा था वह भी पावस प्रसाद में बदले हुए रूप में हैं, लेकिन कहीं भी द्विवेदी जी के संशोधनों को शंकर जी ने अपनाया नहीं है। कवि की विकासशीलता के साथ साथ यह दृढ़ता आज भी ध्यान देने लायक है।